ओम शांति। सेवा है हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसे सेवा में रुचि न हो, लेकिन सेवा अनेक प्रकार की है। तन मन धन से है, मनसा वाचा कर्मणा है। आखिर वो कौन सी सेवा है जिसे हम सर्वोच्च कहे? आइए आज इसी विषय पर क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है दिल्ली से पधारे हुए हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी। हम सभी आपका सभा में स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी एक हाथ हिला के अपने स्वागत के उद्गार जाहिर करेंगे। आप यज्ञ के प्रमुख वरिष्ठ भाइयों में से एक हैं। हम सब इनसे परिचित हैं प्योरिटी न्यूज़पेपर के द्वारा, जिसके आप संपादक हैं। ब्रह्मा बाबा के डाक टिकट छपवाने के आप प्रेरणा स्रोत हैं। भारत का पहला, विश्व का दूसरा सेवा केंद्र पांडव भवन आपके लौकिक घर में शुरू हुआ था। आप एक कुशल वक्ता तथा लेखक भी हैं। पॉलिटिकल विंग के आप चेयरपर्सन हैं। कई भाषाओं में छपने वाले राजयोगा कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के आप लेखक एवं निर्देशक हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के रूप में अनेक देशों की यात्रा कर आपने लाखों आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाया है। तो आइए ऐसे विशेष आत्मा द्वारा क्लास सुनेंगे। सर्वोच्च सेवा, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने ये विशाल डायमंड हॉल, डायमंड युग में अपने डायमंड बच्चों के मिलने के लिए बनाया है। हम सब जो इस मिलन के लिए उपस्थित हैं, बाबा कहते हैं कितने 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 भाग्यशाली हैं जो थोड़े से बाबा मिलन की टर्न जो बची है उसमें आकर के उपस्थित हुए। तो सबसे पहले आप सभी का, जो दूर दूर से आए हैं मुसाफरी करके, इतनी दूर से तो नहीं आए जितनी दूर से शिव बाबा आते हैं, फिर भी शरीरधारी हैं, तो आप सबका बाबा के मधुबन में, बाबा के शांति वन में और बाबा के डायमंड हॉल में बहुत 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 स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये ऐसा स्थान है जहां पर हम इकट्ठे होते हैं और इस विषय में जो विचित्र बात है, जिसे हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, उस अलौकिक डायमंड मिलन के लिए टर्न बाय टर्न, क्योंकि बाबा का परिवार बहुत बड़ा है, यहां पर आते हैं। और डायरेक्ट बाप से और दादा से रूहानी मिलन मिलाकर एकदम बैटरी फुल चार्ज होकर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सागर है, यहाँ पर बादल भरने के लिए आते हैं और जैसे सागर से बादल भरते हैं तो दूर दूर तक वर्षा करते हैं, तो बाबा के बच्चे भी यहाँ से जाकर के दूर दूर तक ज्ञान की वर्षा करते हैं। वो जो हमें आज टॉपिक मिला है, जो गीत भी बजा है, सर्वोच्च सेवा, वो सर्वोच्च सेवा सिर्फ बाबा के बच्चे ही कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, किंतु वो कितनी बड़ी सेवा है, कितनी महान सेवा है, उसकी अगर हमें हर समय स्मृति रहे तो हमें इतना नशा चढ़ा रहे, इतना नशा चढ़ा रहे कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा के बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, और सारी दुनिया बेचारे और बाबा के बच्चे बाबा के नैनों के सितारे। तो उसी सेवा के बारे में जो हम सब मिलके कर रहे हैं वो कितनी महान सेवा है, उस विषय को ही हम अपने मन में स्मृति में लाएंगे ताकि हमारा रूहानी नशा इतनी सारी आत्माओं का जो यहाँ एकत्रित हुई हैं उनका रूहानी नशा ऐसी वाइब्रेशन फैला सकता है कि सारा वातावरण दूर दूर तक सुगंधित हो जाए। अब हम शुरू करते हैं। अगर आप सृष्टि चक्र को सामने लाएं, हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं लेकिन हमारे चार अलंकार हैं, हम कभी शंख बजाने में बिजी होते हैं, कभी कमल पुष्प की तरह दुनिया में चलते फिरते हैं, कभी अपनी गदा को आगे लाते हैं ताकि माया दूर से ही भाग जाए, और सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। जैसा समय वैसा अपना अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए आप सब अपने सुदर्शन चक्र को सामने लाएं। तो आप क्या देखते हैं? ले आए सब अपने सामने अपना सुदर्शन चक्र? ले आए तो हाथ उठाइए। हाँ, सभी ले आए। अब उसको देखिए कि सतयुग में और त्रेता में तो सेवा की आवश्यकता ही नहीं होती। आप किसी को सेवा करने किसकी जाओगे? वहां कोई सेवा लेने वाला ही नहीं है। आधा चक्कर तो सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जैसे बाबा ने आज भी मुरली में कहा है, कोई भी चीज सदा नई नहीं रहती, हर चीज धीरे धीरे नई से पुरानी हो जाती है। फिर ये दिन भी आता है, अब सुदर्शन चक्र में देखिए कि सबसे ज्यादा सेवा की आवश्यकता कब है। तो आप क्या पाएंगे कि कलयुग के अंत में आके अति आवश्यकता सेवा की हर एक को है। यहां तक कि सेवा लेने वाले अनगिनत हैं और सेवा देने वाले थोड़े से हैं। अगर सारी दुनिया के सारे धनवानों का धन लेकर आप सारी दुनिया के गरीबों में बांट देंगे तो क्या होगा? सारे धनवान गरीब हो जाएंगे लेकिन गरीब धनवान नहीं होंगे। इतनी सेवा की अति आवश्यकता। इसलिए आजकल क्या करते हैं, जिसको सेवा का शौक है, जिसको दुनिया में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, दानी पुरुष कहते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनकी सेवा करो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई अंध विद्यालय में जाके अंधों की सेवा करता है, कोई जहां पर लंगड़े लूले डिसेबल्ड लोग रहते हैं उनकी सेवा करता है, कोई अनाथ आश्रम में जाके सेवा करता है, कोई विधवा आश्रम में जाके सेवा करता है। इस प्रकार से सेवा करते हैं कि जिनको अति जरूरत है, क्योंकि सबकी सेवा हम कर ही नहीं सकते। तो रिजल्ट क्या है? बाबा कहते हैं फिर सुदर्शन चक्र को सामने लाइए कि ये उतरती कला है, सीढ़ी उतरना ही उतरना है। अगर आप कोई अच्छा काम भी करोगे उससे ऊपर चढ़ने की तो बात छोड़ो, एक सीढ़ी पर खड़े भी नहीं रह सकते, नीचे ही उतरेंगे। मान लो किसी ने विधवाओं की सेवा की, ऐसे उनसे भी अधिक सेवा की जरूरत शायद उनको है जो विधवा नहीं है पर बहुत दुखी है। आपने अंधों की सेवा की लेकिन दो आंख वाले इतने लोग दुनिया में हैं जिनको अंधों से भी ज्यादा सेवा की जरूरत है। कहने का भाव कि आजकल कोई ना कोई कमी होना एक क्वालिफिकेशन हो गई है। जैसे कोई आईएएस होता है, क्वालिफिकेशन है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा ही अंधे होना भी एक क्वालिफिकेशन है कलयुग में, क्योंकि आपकी कोई सेवा करेगा। डिसेबल्ड होना भी एक क्वालिफिकेशन है क्योंकि आपकी कोई सेवा करेगा। विधवा होना भी एक क्वालिफिकेशन है क्योंकि कोई बेचारा तरस खा के सेवा है। और बाकी जो हैं जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो डिसक्वालिफाइड है सेवा के लिए। तो ये कलयुग में ये कहा जाता है। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि लोग हॉस्पिटल बनवाते हैं या हॉस्पिटल के लिए सेवा करते हैं। यहां भी हमने देखा है कई भाई बहन यज्ञ में सहयोग देते हैं तो साथ ये कह देते हैं ये हॉस्पिटल में भी दे देना, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि जो स्वास्थ्य के लिए सेवा करता है उसको एक जन्म के लिए अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया की सारी कमियों का कारण अनपढ़ होना है। बाबा तो कहता है जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओ, पर दुनिया वाले समझते हैं तो वो स्कूल कॉलेज एजुकेशन में सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा भी करोगे तो एक जन्म के लिए तुमको शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन आप कोई भी सेवा कर लो, कंप्लीट सेवा इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट सेवा यह है कि गरीब से गरीब भी सुखी रहे, जो कम धन वाला है, हर व्यक्ति की आयु पूरी हो, अपने जन्म में भी किसी को कोई शरीर का मन का दुख ना हो, वातावरण भी अच्छा हो, अपने मित्र संबंधी भी सुखी हो, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि कहां सतो प्रधान सतयुग, अपने चक्कर को सामने लाइए, कहां धीरे 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 सतो हो गया, फिर रजो हो गया, फिर तमो हो गया, और अब क्या है? अब तमो प्रधान अति तमो प्रधान कलयुग। मनुष्यों ने स्वास्थ्य तो क्या ठीक करना है, सारी हवा को इतना दूषित प्रदूषित कर दिया कि सांस लेना भी जैसे बीमारी मोल लेना। मनुष्यों ने अपनी अकलमंदी से पानी को इतना गंदा कर दिया, इतना खराब कर दिया कि पानी भी आप नल से नहीं पी सकते, बोतल का पानी पीना होता है, वो भी करप्शन है, पता नहीं कैसा हो। नदियां जो थी वो गंदे नाले बन गई हैं, गंगा की सफाई के लिए एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, आप सोच सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है मनुष्य विकारों से भरे हुए, वातावरण हवा क्या, पानी क्या, धरती क्या, प्रदूषण से भरा हुआ। तो अब इतना बड़ा जो कार्य है, मुख्य सेवा क्या हो गई? विश्व परिवर्तन, अर्थात सारी दुनिया को बदलना। घोर कलयुग दुख दाम को बदल के एकदम सतो प्रधान सतयुग बनाना। अब ये सेवा तो परमात्मा ही कर सकता, किसी मनुष्य के वश में तो है नहीं। वो कोशिश भी करेगा तो ऐसा दुनिया का चक्कर चला हुआ है कि अच्छा काम भी खराब हो जाए। अगर आप किसी कूड़े के ढेर में कोई अच्छी चीज आपकी गिर भी जाए तो आप उसको उठा भी नहीं सकते, आपके हाथ खराब होंगे, चीज भी गई। तो ऐसी दुनिया में बाबा कहते हैं कि सब मुझे याद करते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान दुख हरो, क्योंकि एक दुखी हो तो कोई मनुष्य हर दे, पर जहां सारे दुखी हैं तो वो दुख कौन हरे? अगर आप सारी दुनिया का आज का दुख देखें, बाबा कहते हैं कई बार कि आप एकांत शांत में अमृत वेले बुद्धि को एकाग्र करो तो आपको आवाजें आएंगी, भक्तों की पुकार आएगी, दुखियों की पुकार आएगी। बाबा कहते हैं कि आप सुन सकते हो। तो उसमें क्या है? हे परमात्मा दुख करो, हे परमात्मा पति से पावन करो, आरती गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। या जैसे आज की मुरली में था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो सार क्या निकला कि असली सेवा वो है कि मनुष्यों के इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण हो, इतना परिवर्तन हो कि आयु पूरी हो जाए, सदा स्वस्थ रहें, सदा धन धान संपन्न रहें, वातावरण इतना सुंदर और इतना पवित्र हो कि उससे भी दिल खुश हो जाए, कोई टाइम का नुकसान किसी का ना हो, कोई मन की उलझनों में ना उलझा हो, किसी को व्यर्थ संकल्प ना हो, जो उसको करना उसी का संकल्प आए और जो संकल्प आए वो उसका सिद्ध हो जाए। तो ऐसी दुनिया तो भगवान ही बना सकता है, और इतना डिफिकल्ट काम है ये कि सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। फिर भी कई कहते हैं इसका सबूत चाहिए, वो समय परमात्मा को नहीं जानते, बीमारी को नहीं जानते, कोशिश करते रहते हैं, इसका सबूत चाहिए, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई जाके गंगा में दूध बहा रहा है, कई कुछ कर रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी निशानी भी रखी हुई है और वो भगवत गीता है कि मैंने साफ साफ वर्ड ड्रामा तो जानते नहीं, पर उनको ये बता दिया है कि मैं परमात्मा को आ करके नई दुनिया बनानी पड़ती है, लेकिन सदा नई नहीं रहती, फिर एक दिन मुझे आना पड़ता है, जब सबके बस से बाहर हो जाता है फिर मैं उसको नई बनाता हूं। ये तो गीता में लिखा हुआ, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चों को किसी को उंगली पकड़ना हो, बहुत संशय बुद्धि हो, डिबेट करता हो, उसको गीता के ऊपर ले आओ कि भगवान ने कहा है ना कि पतित पावन मैं हूं, या पतित पावनी गंगा है, या पानी की नदियां हैं। तो इसलिए जिसका काम उसी को साजे। अब इतनी सारी दुनिया का परिवर्तन, मनुष्यों का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, फल मीठे हो जाएं, पेड़ों में कांटे ना रहें, पशु पंछियों में रंग आ जाएं जो उड़ गए हैं, सारा कुछ, तो ये तो भगवान ही इसका फार्मूला जानता है। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरा काम ही ये है, मैंने बच्चों को नई दुनिया बना के देनी है, बच्चों ने उसके सुख भी भोगना है, जब अति आ जाती है तो मेरे कोई पुकारते हैं, मैं उसका परिवर्तन कर देता हूं। अब सर्वशक्तिवान कौन है? अगर देखा जाए तो सर्वशक्तिवान कौन है? एक परमात्मा है या और भी कोई है? हम बच्चे तो जानते हैं ना, सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा है? जरा हाथ उठाइए ताकि किसी को नींद ना आ जाए। ठीक है, अब देखो सर्वशक्तिवान के पास शक्ति है दुनिया को परिवर्तन करने की, वो निराकार है। अब वो शक्ति किसको दे, किसके द्वारा ये काम करे? जैसे कहीं बहुत बड़ा बिजली का पावर हाउस हो, उसमें बहुत बिजली हो, लेकिन वो बिजली कौन यूज कर सकता है? जो उसका कनेक्शन अपने घर में लाए। और बिजली का कनेक्शन के लिए भी तार चाहिए। बिजली हर चीज में नहीं जाती, लकड़ी में बिजली नहीं जाती, कई चीजें बैड कंडक्टर होती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी सर्वशक्तिवान हूं, पर मैं खुद नहीं करता। अगर बाबा चाहे तो एकदम जादू से शू करे और सारी दुनिया ठीक हो जाए। लोग कहते भी हैं शू मंत्र, कि शिव अपना शिव का कोई मंत्र है जिससे शू करने से दुनिया ठीक हो जाती। पर बाबा कहते हैं मैं भी बंधा हुआ हूं, जो करेगा सो पाएगा। अब अगर मैं दुनिया को ठीक कर दूं, दुखी से सुखी कर दूं, तो सुख कौन भोगेगा? बाबा भोगेगा। बाबा कहता है मैं दुख सुख से न्यारा हूं, मैं भी सुख में आ गया तो फिर दुख में भी आना पड़ेगा, आपको कौन निकालेगा? इसलिए बाबा कहते हैं मैं करण करावन हार हूं। मेरी ऑल माइटी की शक्ति किस प्रकार से पतित दुनिया को पावन करती है, मनुष्यों का परिवर्तन करती है, फिर उनके द्वारा अन्य मनुष्यों का परिवर्तन करती है, फिर उनके द्वारा प्रकृति का परिवर्तन करती है, टोटल सारी बुराई को विनाश कर देती है, वो उसके लिए मुझे कनेक्शन वाली सोल चाहिए। जो बैड कंडक्टर है उसके अंदर मैं उसके द्वारा काम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका ये जो शरीर है इतना बड़ा, इसमें परमात्मा की शक्ति नहीं धारण हो सकती। आपके कानों में धारण हो जाए, आपकी आंखों में धारण हो जाए, आप देखकर किसी को भस्म कर दें, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा आत्मा है और उनकी शक्ति भी रूहानी है, तो वो कहते हैं कि वो आत्मा धारण कर सकती है। तो आत्माएं भी कौन सी धारण कर सकती हैं? अगर खुद ही आत्माओं के अंदर डिफेक्ट होगा, आपके किसी बिजली के स्विच के अंदर डिफेक्ट हो, आप देखो क्या होता है, उसके नजदीक हाथ ले जाओगे तो जोर से झटका मारेगा, आप दोबारा उसके नजदीक नहीं जाओगे, या फिर ऐसे खींच लेगा जो आप छूट नहीं सकते, कोई आपको छुड़ाने आएगा वो भी पकड़ा जाएगा। एक एसी होता है, एक डीसी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं या तो एसी हैं अर्थात धक्का मारती हैं, उनमें क्रोध है, अहंकार है, तो वो तो बाबा की शक्ति ले नहीं सकती। बाबा ने क्या कहा, रोब डालना, क्रोध करना, ये तो ना शक्ति ले सकता है ना पास ऑन कर सकता है, क्योंकि सेवा के लिए पहली ताकत चाहिए रहम दिली की, दया की, सेवा भाव की। तो भगवान हमको खुद आके सिखाता है, ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं, मैं विश्व सेवाधारी हूं, मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। और हमको भी कहते हैं कि बच्चे तरस खाओ, आज भी कहा है कि बच्चे तरस खाओ, पहली क्वालिटी सेवाधारी की है तरस खाना। अभिमानी व्यक्ति क्या सेवा करेगा, वो तो कहेगा कोई मेरी सेवा कर जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको तो ज्ञान है सारे चक्कर को, हमें तो कहते हैं सुदर्शन चक्कर फिराओ, हम सतयुग में आगे का भूल जाते हैं और युगों में हमें पता ही नहीं होता। सिर्फ इस डायमंड युग में जिन जिन बच्चों को बाबा ने जन्म पत्री दे करके चुना कि ये हैं वो बच्चे जो मेरी बात को समझेंगे, पुराने भगत हैं, सतयुग के देवता हैं, और उनके मन में ये बात जाएगी कि हाँ वक्त आ गया, डायमंड एज आ गई, तो वो कलयुग से अलग हो जाएंगे। हैं कलयुग में, आप सोचो कि कमल फूल जो हमारा विष्णु का सिंबल है उसकी सतयुग में आवश्यकता है क्या? कौन जो कहते हैं सतयुग में कमल फूल की आवश्यकता नहीं है वो हाथ उठाओ। सतयुग में हमें कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, वहां कीचड़ी नहीं है। अच्छा, शंख ध्वनि दूसरे को जाके ज्ञान सुनाओ सतयुग में है, हाँ वो भी नहीं है। अच्छा, अगर चक्कर घुमाए कि मुझे कलयुग में जाना है तो उनकी खुशी मारी जाए, वो भी नहीं है, और गदा भी नहीं है, वहां कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं में वो संस्कार होगा उनको आके मैं निमित्त बनाता हूं, और उसमें तो पूरी सेना होती है, नंबरवार निमित्त बनते हैं, पर बनते वही हैं। तो इसलिए हमको पहला नशा क्या है, बाबा कहता है निश्चय और नशे का कनेक्शन है, जितना निश्चय उतना नशा। और माया क्या कोशिश करती है, वो हमारा कनेक्शन तोड़ती है। उसको पता है कि जिसका अलमाइटी से कनेक्शन होगा है उसका तो रोशनी का बल्ब जलता रहेगा, वहां अंधेरा होगा ही नहीं, ना वो खुद ठोकर खाएगा, ना भटकेगा, ना कंफ्यूज होगा, आसपास भी उसके रोशनी रहेगी। तो क्या करो, जैसे चोर लोग होते हैं तो घर में जाके बत्ती स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि हम चोरी कर सकें। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने बच्चों को क्या कहा हुआ कि सारे विश्व परिवर्तन का पहले स्व परिवर्तन चाहिए ताकि हम अच्छी तरह ऑलमाइटी की शक्ति ले सकें, फिर जितना जितना स्व परिवर्तन होगा उतना विश्व परिवर्तन करेंगे। तो उस सारे का आधार एक शब्द में है, वो कौन सा शब्द है? है जो हमारा महामंत्र है वो कौन सा है? मनमना भव। अब ये तो संस्कृत का शब्द है, किसी को समझ में ना आए तो बाबा ने उसको सिंपल कर दिया जो हर पढ़ा लिखा अनपढ़ा सब समझ सके, कि अपने को आत्मा समझो, मुझे प्यार से याद करो। क्या मतलब हुआ? दुनिया में भी आपकी स्मृति में जो चीज होगी आप वैसा ही व्यवहार करोगे, वैसा ही बोलोगे, वैसा ही मन में आएगा। अगर आपकी स्मृति में आ जाए यहां बैठे बैठे कि डायमंड हॉल में एक बहुत बड़ा काला सांप है, पता नहीं घूम रहा है सीटों के नीचे, तो आप क्या करोगे? आपको अपने आसपास के भाई बहन दिखेंगे या स्टेज पर कोई दिखेगा या हर जगह सांप दिखेगा, काला सांप पता नहीं मेरे इधर ना हो उधर ना हो, है? इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह, अगर आप बादशाह भी हो गए और आपको चिंता रही तो काहे के बादशाह। कहते हैं कि एक बादशाह था, बहुत थक गया, सारा दिन इधर उधर अपनी राजधानी में घूमता रहा, रात को बहुत थक के आया और महल के दरबान को बोला मैं बहुत थका हुआ हूं, आज भोजन भोजन नहीं, सीधा मैंने सोने हैं। उसने कहा हजूर जाओ, आपका सोने का कमरा है महल में, वहां सो जाओ। जब राजा जाने लगा तो दरबान ने कहा एक बात है, एक घंटा पहले आपके इस कमरे में एक सांप चला गया था, काला बड़ा जबरदस्त सांप था, हम सब कोशिश करते रहे उसको ढूंढने की, मिला नहीं, पर आप तो बादशाह हैं, आपको क्या कहेगा वो, आप थके हुए हैं जाके सो जाओ। अब बादशाह सो सकेगा या उसको सांप ही सांप दिखेगा? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? स्मृति में जो आ जाए आपकी सारा सोच सारा समय उसी में लग जाएगा। मान लो आप में से किसी का जाने का रेलवे रिजर्वेशन बुक नहीं है, अच्छा आप सारा दिन चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके मन में मेन बात ये रहेगी मेरी सीट बुक हो जाए। हर छह घंटे बाद पूछोगे भाई हो गई, वो कहेगा अभी नहीं हुई, फिर दोबारा पूछोगे। तो कोई भी संकल्प चाहे वो शक्ति का हो या कमजोरी का हो, किसी के मन में जो स्मृति होगी वही वो होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान, आपको मैंने बच्चा बना लिया, बच्चा इधर उधर भागने की कोशिश भी करे तो पेरेंट उसको पकड़ के रखता है कि कहीं गुम ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं आजकल जो मुरलियां आ रही हैं कि बच्चे मैं अमृत वेले तुमको सकाश देता हूं, तुम जरा सा भी भूल कर भी मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें पद्मा पद्म हेल्प देता हूं, कम से कम अपना ग्लास तो नल के नीचे लाएं। अगर आप और जगह घूम रहे हैं तो भगवान भी क्या कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं मैं तो कहता हूं तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, मेरे से कनेक्टेड रहो। अभी हमने गीत सुना, उसमें क्या था कि अपने सर्व संबंध अगर बाबा से जोड़ लो तो आपको और किसी संबंध की जरूरत भी नहीं है। आज की गीता पढ़ लो, उसके बाहर ही लिखा हुआ है तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, लास्ट में है तमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरा सब कुछ है। अब बाबा कहता है मैं प्रैक्टिकली आंखें बनता हूं, जिस चीज की आपको कमी है मैं तो ऑलमाइटी हूं, अगर आपको अपनी माँ याद आती है तो माँ बना लो, अगर बच्चा याद आता है तो बच्चा बना लो। तो फिर भी ये ना जान करके तो बच्चे क्या करते हैं, फिर भी बाबा भी रहे और दुनिया भी रहे, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, हैं? क्योंकि हमारा गीत क्या है, मेरा तो आगे क्या है, मेरा तो शिव बाबा एक, कौन नहीं कहेगा शिव बाबा मेरा है, बाबा के बच्चे हैं। लेकिन दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्या है, दूसरा ना कोई। तो हमने आधी लाइन तो पकड़ ली, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरी को हमने चेंज कर दिया कि दूसरे भी मेरे, दोनों जगह का सुख ले लो। तो ये तो दुख वाली दुनिया है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। यहां तक कि जो आपका शरीर है, जो जिसको आप सबसे प्यारा मानते हो, है ना, ये शरीर भी आपको इतना दुख दे सकता है कि आप कहो बाबा इससे छुड़वा ले, ये वाला जो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है कि जिनका भरोसा ही नहीं, कभी धोखा दे दें, कभी तंग करना शुरू कर दें, आप उनको अपने मित्र समझते हो। बाबा कहते हैं मैंने सतयुग में कभी कहा है कि देवता शरीर को भूलो? नहीं, तुम तो द्वापर में मूर्ति बना के भी उसको याद करते रहे, मैंने मना किया है। लेकिन इस समय जबकि सारी चीजें तमो प्रधान है, आपकी माता बहुत प्यार करती होगी आपको, लेकिन मजबूर है, खुद ही मजबूर है। आपका बच्चा आपको बहुत प्यार करता होगा, लेकिन खुद भी उसके अंदर कई विकार हैं जिस कारण से वो निभा नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब पराये हैं, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह। तो सिर्फ गीत गाना है या प्रैक्टिकली समझना है? तब बाबा कहते हैं कि इस प्राणी दुनिया से बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। यहां समझो कि हम रह रहे हैं, मुसाफिर हैं, लेकिन ये ना समझो कि यहां हमको पक्के रहना है। वो देह भान वाले ये समझते हैं, हालांकि देह गई तो गया। तो बाबा कहते हैं कि कमाई देखो, दुनिया में ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसकी कमाई एक जन्म से ज्यादा चलती हो। आप जितना टाइम लगाते हो, मैं धन कमा लूं, मैं ये कर लूं, मैं जमीन खरीद लूं, मैं यहां कर लूं, इसको मित्र, जो भी करते हो, वो कमाई यहीं की यहीं शरीर गया गया, साथ क्या जाएगा? अच्छे संस्कार। इसलिए बाबा कहता कि मेरे साथ कनेक्शन रखोगे तो मैं तुम्हें नई दुनिया में, अच्छी दुनिया में, जहां दुख नहीं है, यहां भी तुमको दे सकता हूं, लेकिन दुख की दुनिया में कुछ पाओगे तो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए जहां मन भी प्योर हो, वाणी भी प्योर हो, संकल्प इतने प्योर हो कि उतने ही संकल्प उठें जितना मुझे काम करना है, एक भी व्यर्थ ना उठे, तो ऐसा बाबा कहता है कैसे करें? तो एक ही शब्द बाबा ने बताया हुआ है, हम संस्कृत नहीं बोलते, मुझे याद करो प्यार से तो मैं तुम्हारे सब विकर्म विनाश कर दूंगा। और जब हमारे जितने होते जाएंगे उतने ही हमारे वाइब्रेशन प्योर होंगे, जो हम दूसरों के भी, कोई अवगुण वाला आएगा, कोई बुरी विचारों वाला आएगा, कोई आपसे ईर्ष्या करने वाला आएगा, कोई आपको बुरा भला कहने वाला आएगा, तो बाबा ने क्या कहा है ताजी मुरली में? बाबा ने कहा है कि तुम बाबा के बच्चे हो, किसी को खाली नहीं भेजो, हर एक को गिफ्ट दो। इतने गिफ्ट हमारे पास होने चाहिए जो लाइन लगे, इतनी लग जाए कि आप सबको गिफ्ट दे सको। मान लो इस हॉल में 10,000 आत्माएं बैठी हैं, आप 10,000 की 10,000 आत्माओं को गिफ्ट दे सको। क्योंकि हमारे गिफ्ट कौन से हैं? हमारे गिफ्ट वो हैं जो देने से खत्म कम नहीं होते, देने से आपके पास उतने ही रहते हैं। इसीलिए हम कैंडल लाइटिंग करते हैं, दीपक जलाते हैं, हर अच्छे फंक्शन में, अच्छे काम में दीपक जलाया जाता है। क्यों? कि एक दीपक से दूसरा जलाओगे तो पहले की लाइट कम नहीं होगी, दो हो जाएंगे। अगर सारे जला दोगे तो दिवाली हो जाएगी। इसी प्रकार से खुशी है, अगर आप अपनी खुशी किसी को बांटते हो तो आपकी कम नहीं होती, दोनों खुश हो जाते हैं, खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा ने तो यही कह रखा है, खुशी बांटो, ज्ञान बांटो, रोशनी दो, मेरा परिचय दो। अच्छा, तो इसलिए आप इतने गिफ्ट दे सकते हैं। तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं अलग अलग गिफ्ट देंगे, पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता इसको क्या दें, इसको क्या दें, क्या पता इसको क्या जरूरत है। तो बाबा कहते हैं एक गिफ्ट दे दो, शुभ भावना, शुभ कामना। क्या हम अपने मन में ये नहीं धारण कर सकते कि मन मेरा है? देवताएं, उनका मन शुभ ही शुभ सोचता है, इसीलिए वहां स्वर्ग है। हमने सतयुग में जाना है तो हम यहां से प्रैक्टिस करें शुभ सोचने की। अगर हम अशुभ सोचते रहेंगे तो सतयुग में जाने लायक नहीं होंगे, फिर हमारा शुद्धिकरण किया जाएगा, पिटाई होगी। सफाई करने के कई तरीके हैं, नाजुक कपड़े को आप डंडा लगाओगे तो और फट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना दो। वो आप यहां बैठे हुए अमेरिका में भी दे सकते हो, जिस जो आपके सामने नहीं है उसको भी दे सकते हो। जा तेरा भी भला हो, जा तेरा भी भला हो, जा तेरा भी भला। ये सबसे बड़ी सेवा है कि मेरे मन में अशुभ ना उठे। वो कोई कैसा भी हो उसका भी भला, कोई आपसे दुश्मनी कर रहा हो कि इसको मैं क्यों दूं ना, मेरा काम है शुभ। जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल। दूसरी बात बाबा क्या कहता है कि कोई नेगेटिव से आपके ऊपर नेगेटिव बात करता है, आपसे कोई उल्टा बोलता है, आपको पता है उल्टा बोल रहा है, आपका निरादर करता है, तो आप नेगेटिव को धारण नहीं करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके धारण करो। जैसे कहीं गंदा पानी हो, आपको साफ पानी मिले ही ना तो आप क्या करोगे, गंदा पानी पी लोगे क्या? आप उसको बॉयल कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, कोई तरीका लगाओगे, उसमें फटकड़ी मिला लोगे ताकि गंदे को शुद्ध करके पिया जाए। इसी प्रकार से जो हम कहते हैं अन्न दोष से बचो, तो अन्न सिर्फ ये वाला थोड़ी होता है। अन्न तो कानों के द्वारा भी कुछ अंदर जा रहा है, आंखों के द्वारा भी कुछ अंदर जा रहा है। वो तीन बंदरों की मिसाल नहीं देते, हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल, और सबकी जड़ है थिंक नो ईवल। तो इसलिए हम एक ही फार्मूला अपना लें कि बाबा के हम बच्चे हैं, जो ही हमने अशुभ सोचा हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, फिर हम दुखी होंगे। जब बाबा साथ है जो सबका शुभ सोचता है, मैंने उसको अपने दिल में बिठाया हुआ है तो मैं अशुभ क्यों सोचूं? फिर इतना पावरफुल बिजली का करंट है, उसके पास कोई खराब चीज आएगी तो भस्म हो जाएगी। तो कोई भी नेगेटिव सोचे उसको अंदर नहीं आने दो। तब बाबा कहता कि हमें जहां हमने जाना है वहां के संस्कार अवश्य धारण करने हैं, जो वहां पर संस्कार नहीं है उसको त्याग करना है। इसी को बाबा कहता है मुझे याद करोगे तो मैं तो गुणों का ही सागर हूं, मैं तो शक्तियों का ही सागर हूं, मैं तो अच्छे के साथ हूं, मैं तो गरीब के साथ हूं, जो दुखी है उसका ही कल्याण करने वाला हूं, सुखी को सतयुग में तो बाबा आते ही नहीं। इसलिए सारी चीज का सार ये निकलता है कि हमने अपने मन में बाबा को बिठाना है, और किसी बड़े को, किसी महात्मा को भी कोई घर में ले आए तो सारे घर का ध्यान रखता है। ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरे घर में गुरु आता था तो मैं टॉयलेट में भी सेंट डालता था, और दूर दूर कोई कुत्ता भी किसी के घर में हो कि बोले ना और मेरे गुरु को, उसको भी जाके सेट करता था। तो एक लौकिक के लिए हम कर सकते हैं, ये तो भगवान है। अब देखो हम कितने लकी हैं, बाबा ने इतना शानदार यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें बूढ़े भी पढ़े, अनपढ़ भी पढ़े, हैं? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पुत्र बनना है। फिर बाबा कहते हैं इसकी पढ़ाई की कमाई आपकी 21 जन्म तक चलती है, और ऐसी दुनिया में भेजता हूं जिसको लोग तरसते हैं, सिर्फ सुना हुआ है स्वर्ग है, मर गया तो स्वर्गवास हो गया। इसलिए जब ये रियल हो रहा है तो हमें तो रात दिन जाग करके बस बाबा मेरे साथ रहे, तो बाबा के गुण भी साथ रहेंगे, जो बाबा चाहता है वो हम फॉलो करेंगे, और यहां आने का भी हमें लाभ होगा। सार ये निकलता है कि बी के मैंने अलौकिक, ना हम इस लोक के हैं ना हम उस लोक के हैं, हम कौन हैं? अलौकिक। अलोक को लाइट भी कहते हैं, हिंदी में अलोक का मतलब होता है रोशनी, यानी हम मर जीवा हैं, उस दुनिया से मर गए, उस दुनिया में जाना है। जब तक वो तैयार नहीं होती हम यहाँ हैं। और बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि जब तक आप संपूर्ण नहीं बनते, आप कर्मातीत नहीं बनते, तब तक आप इस बॉडी में हैं। तो कोई ये ना समझे कि मैं कंप्लीट हो गया, क्योंकि जिस दिन हम कंप्लीट हो गए हम इस बॉडी में नहीं रहेंगे। इसलिए जो टाइम हमें मिला हुआ है, टाइम तो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो बाबा युक्ति भी रिफाइन करते जा रहे हैं, रिफाइन करते जा रहे हैं कि अब जिधर को आपका मुंह है, उठ जाग मुसाफर बोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। हमारा सुबह सुबह गीत बजता है, जो जागत है सो पावत है, कौन सी जागृति है इन आंखों की नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है। तो हमें पूरा जोर लगा के बड़े स्नेह से, क्योंकि मजबूरी से या मेहनत से आप बाबा को याद नहीं कर सकते, प्रेम से कर सकते हैं। ये सोचिए हमें दुनिया से क्या मिलना है और बाबा से क्या मिलना है। तो आप ये पाएंगे दुनिया से हमें कुछ नहीं मिलना है और बाबा से हमें सब कुछ मिलना है। तो जिससे सब कुछ प्राप्ति हो और इतनी हो उसको कौन भूलेगा। तो सार क्या हुआ, हमें अलौकिक रहना है, लौकिकता में नहीं आना। आपने लौकिक घर को भी अलौकिक बनाइए, अपनी लौकिक वस्तुओं को भी अलौकिक यूज करिए, अपने मन को भी अलौकिक बनाइए। और मैं आत्मा हूं, प्यार से अपने पिता को साथ रखिए, याद करिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से दूसरी सेवा आप ही हो जाएगी। ओम शांति।